जो अनेक जन्म लेने वाले हैं और लेफ्ट साइड के वो जास्ती कमजोर बन जाते हैं, इसलिए वो पहले कन्वर्ट हो जाते हैं दूसरे धर्मों में। वो विरोध भी नहीं करते दृष्टि के व्यभिचार का, तो प्रभावित हो गए ना। प्रभावित माना प्रजा, और प्रभावित न हो तो उनको प्रजा थोड़ा ही कहा जाता है।
महाभारत में दो अश्वत्थामा दिखा रहे, एक हाथी वो मर जाता है और एक अश्वत्थामा रहता है।
वो तो उन्होंने व्याख्या दी है एक की, क्या मति ब्रह्म पैदा करने के लिए एक कोई दो तरह से दिखाई दिया, बाकी ऐसे नहीं कि अश्वत्थामा दो है,
एक ही होता है।
हाँ जी,
तो कौरवों का साथ देता है।
हाँ जी हाँ जी,
और उसके बारे में ये कहते हैं कि वो अभी भी भटक रहा है क्योंकि उसको मृत्यु नहीं है।
वो मणि मिल जाएगी तो भटकेगा।
बाबा, ये जो इस्लाम धर्म की आत्मा है
मुंह
जो देवताओं की तरफ
दिखाए,
इस्लाम
इस्लाम धर्म की आत्मा। हाँ जी,
अभी जो बिके वालों ने चित्र निकला है,
हाँ,
उसने उसका मुंह फिरा दिया,
इधर कर दिया,
उल्टे साइड कर
दिया, जैसे और धर्म पिताए हैं सामने की ओर मुंह करके बैठे,
वैसे भी नहीं,
उल्टा कर दिया। अच्छा, भारत से विमुख कर दिया, तो उनकी बुद्धि में बैठा नहीं होगा कि भगवान भारत में ही आते हैं और में नहीं आते। क्या प्रैक्टिकल में अभी ऐसा हो रहा होगा, जो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं उनकी बुद्धि में ये नहीं बैठ रहा है, उन्होंने पक्का कर दिया क्या कि भगवान भारत में नहीं आता है, किसमें आता है, हैं? क्राइस्ट और कृष्ण में आता है या भारत में आता है? कृष्ण में आता है, इसलिए उल्टा मुंह कर दिया।
बाबा ने शनि के बारे में बताया है लेकिन मंगल राहु और केतु के बारे में बताया नहीं बाबा।
पहले असुरों का पाठ खुलता है या पहले देवताओं का पाठ खुलता है? कौन अपने को जास्ती लंबे समय तक गुप्त रह करके पाठ बजा सकते हैं? देवताएं अपने को गुप्त रखते हैं, बाप गुप्त तो बाप के बच्चे भी गुप्त, दान मान पद पुरुषार्थ सब गुप्त। और जो असुर होते हैं जो कुछ भी दान करेंगे पहले सबको प्रत्यक्ष कर देंगे, देखो हमारा मान मर्तबा जास्ती है, हमारी बात पहले मानो। ये अंतर हो जाता है, वो मान मर्तबा यही लेना चाहेंगे, भविष्य में इंतजार करने के लिए उनके पास धैर्य नहीं होता है।
ये अपने अपने कर्मों के द्वारा प्रत्यक्ष हो जाएंगे। अपने कर्मों के द्वारा प्रत्यक्ष हो जाएंगे।
देह अभिमानी पहले अपने को प्रत्यक्ष करता है या आत्मा अभिमानी गुप्त पुरुषार्थ करता है? छुपा रुस्तम, आत्मा गुप्त है या देह गुप्त है? आत्मा गुप्त है। तो जो पक्के आत्मा होंगे 84 जन्म लेने वाले, वो संसार के सामने अंत में पार्ट बजाएंगे, हीरो पार्ट। वो 9 लाख सितारे संसार के सामने प्रत्यक्ष होंगे।
प्रजापिता है,
ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू न होती हो। ये 13 शब्द किसके लिए यूज किया? प्रजापिता के लिए। जो सारी सृष्टि का बीज है वो युधिष्ठिर का भी बीज है, वो अर्जुन का भी बीज है, वो भीम नकुल पांच पांडवों का भी बीज है और सब राक्षसों का भी बीज है। शिष्टाचारी दुनिया मेरी है तो भ्रष्टाचारी दुनिया मेरी नहीं है क्या? ये कौन बोला? शिव बोला
बाबा।
और
नौकुरी के ब्राह्मण बोले हुए हैं, नौकुरी माने कौन से ब्राह्मण
है? नौ ऋषि हुए, उन्हीं के नाम पर नौकुरियां पड़ गई, चाहे वो भारद्वाज हो, चाहे वो पाराशर हो, चाहे वो काश्यप हो, चाहे वो भृगु हो, वो ही नवधर्म, वो ही नवधर्म के नौ मुखिया, वो ही नौ के नौ बीज।
राधा का क्या मतलब है? राधा का क्या है?
जो कष्ट में मस्त रहती हो, जिसको सिर्फ कृष्ण का ही आकर्षण होता हो, कृष्ण के अलावा और किसी का आकर्षण नहीं, वो समझती है कि वास्तव में कृष्ण संगम युगी कृष्ण है या कोई दूसरा कृष्ण है? संगम युगी कृष्ण है, माना राम वाली आत्मा जिसकी बुद्धि राम माने राम, धा माने धरी रहती हो। किसमें धरी रहती है? एक राम में ही रमण करती है और कोई में रमण नहीं करती है। जन्म जन्म लगी रगर हमारी, वरों शंभु न तो रहूं कुमारी। और हैं सब पटरानियां तीव्र पुरुषार्थ करने वाली, लेकिन एक है महारानी, वो पट में जाके नहीं गिरती। आखिरी जब फाइनल पेपर होता है तो भी पट में जाकर नहीं गिरती। और
जैसे बाबा सारस्वत ब्राह्मण पुष्करणी ब्राह्मण,
सरस्वती ज्ञान की देवी मानी जाती है, इसलिए जो ज्ञान में रमण करते हैं वो है सारस्वत, और ज्ञान में रमण नहीं करना चाहते लेकिन दूसरे लोग उनको पुष्ट सत्ता दे दे करके चलाते हैं, उनको कहते हैं पुष्करणी। कौन अच्छे हुए? सारस्वत अच्छे हुए, उनको खुद की रमक होती है ईश्वरीय प्रॉपर्टी लेने की। ईश्वर कोई स्थूल प्रॉपर्टी लाता है क्या? भगवान की प्रॉपर्टी क्या है? ज्ञान ही प्रॉपर्टी है। मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार।
मुझे में आता है कि जब तुम नास्तिक थे तब निधन के थे, अगर निधन का अर्थ स्थूल धन से लिया जाए तो नास्तिक धर्म की आत्माएं तो धन से भरपूर है आज।
वो तो आपने अर्थ ले लिया ना, आप चल रहे हैं अलौकिक, ब्राह्मण है अलौकिक दुनिया में है, फिर लौकिक बात क्यों लोग उठाई है? नहीं अभी नहीं आता है, जब रिजल्ट निकलेगा तब आता है। अभी रिजल्ट नहीं निकला है, अभी परीक्षा नहीं हो गई, जो पद मिल जाए। पद कब मिलता है? जब परीक्षा में पास हो जाएंगे तो पद मिल जाएगा। और
एडवांस में दो तरह की आत्मा है, एक शरीरधारी और एक उसमें प्रवेश करके कार्य करने वाली।
बल्कि तीन तरह की आत्माएं हैं। क्या? जो विजयमाला की आत्माएं निकलेंगी वो एडवांस नहीं कही जाएगी, है? वो तो प्रैक्टिकल में आगे बढ़ जाएंगी, वो प्लानिंग करते ही रह जाते हैं, वो इंस्पिरेट करते ही रह जाते हैं, और वो प्योरिटी का माल प्रैक्टिकल में ले जाते हैं। तो कौन आगे हुए? प्रैक्टिकल हमेशा आगे जाएगा। हाँ, वो तो जैसे मकान बनाने वाला मालिक होता है, वो इंजीनियर को कहता है हम पैसे देंगे तुम्हें, करो ये काम, इतना पैसा मिलेगा उतना मिलेगा, इंस्पिरेट करता है। मजदूरों को भी इंस्पिरेट करता है, प्लानिंग करने वाले इंजीनियर्स को भी इंस्पिरेट करता है। तो ब्रह्मा की सोल इंस्पिरेटिंग पार्टी है,
इंस्पिरेट करने वाले ही मालिक
है,
वही मतलब
दुनिया के बतौर वास्तव में यहाँ सेठ कौन है? है? यहाँ तो सेठ शिव बाबा है, सारी डोरी एक शिव बाबा के हाथ में। जो सूक्ष्म शरीरधारी हैं, उनकी भी डोरी किसके हाथ में? शिव बाबा के हाथ में। जो सूक्ष्म शरीरधारी ब्रह्मा की सोल है, कृष्ण की सोल है, वो अगर प्रवेश न करे तो एडवांस ज्ञान अर्जन कर सकेगी? संघ के रंग में ना आए तो एडवांस ज्ञान अर्जन करके संसार का कल्याण के कार्य में लग सकेगी? उन आत्माओं में देहधारियों के मुकाबले जास्ती शक्ति है या कम शक्ति है? उसको कहते हैं पराशक्ति।
बीज कौन है और आधार कौन है?
जो शरीरधारी है वो बीज है, स्थूल बीज। वो उनको जन्म देने वाले हैं, क्योंकि उनको अपना शरीर नहीं है, उनके द्वारा उनको शरीर मिलेगा। उनके शरीर की भी गति तब होगी जब उनमें प्रवेश करके वो पूरा ज्ञान उठावे। इसलिए बोला तुम बच्चों के द्वारा ये सूक्ष्म शरीरधारी भूत प्रेत आत्माएं भी मुक्ति जीवन मुक्ति को पावेंगे, इनका भी उद्धार तुम बच्चों के द्वारा होगा।
बाबा आज पॉइंट आया था कि राम वाली आत्मा जो है जब तक लगाव झुकाव का हिसाब किताब है तब तक वो भीतर से रोती है, जैसे ये हिसाब किताब चुप हो जाता है तो वो फंसती है अंदर से।
जब तक और तब तक का भी हिसाब है, हाँ। ऐसे नहीं कि अभी वर्तमान में वो लगातार रोती ही रोती है। ये संगम युग है। संगम का मतलब क्या है? रोने और हंसने का भी संगम है, सुख और दुख का भी संगम है। अब देखना ये है कि ज्यादा सुख में ही स्टेज में कौन कितने रहते हैं और ज्यादा दुख में ही स्टेज में कौन कितने रहते हैं। जो लंबे समय का पुरुषार्थी होगा वो अंत समय में विजयी हो जाएगा।
माने नंबर वन दुख की छवि तो राम वाली आत्मा पर भी पड़ती है,
क्योंकि सुप्रीम सोल उसमें प्रवेश है और दुनिया की 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं से उसका कनेक्शन है। इसलिए सबके कनेक्शन में आना है, ज्यादा लोगों के कनेक्शन में आना है तो ज्यादा संग का रंग किसको लगेगा? उसी को लगेगा। लेकिन विशेषता क्या है? हिम्मत है बच्चे तो मदद दे बाप, तो बाप उसमें प्रवेश करता है, इसलिए वो संग का रंग तुरंत धुल भी जाता है। ये भी अपनी प्रैक्टिस की बात है। जिसने जितनी जास्ती फाउंडेशन पीरियड में ही निराकारी स्टेज का फाउंडेशन डाल लिया होगा, उसका फाउंडेशन का पुरुषार्थ ही पक्का हो गया। कोई भी मकान की फाउंडेशन मजबूत होती है तो सारी बिल्डिंग मजबूत ही बनी रहती है।
फिर बाबा ने ये भी कहा है कि सदगुरु किसी का नाज नकरा सहन नहीं करता।
वो सदगुरु की बात है।
नहीं, ये भी कहा है कि बाप कभी कभी सहन भी कर ले लेकिन सदगुरु नहीं करेगा।
ठीक है,
तो इसका बाबा ये जो बाप जब सहन करता
है, सदगुरु का पार्ट अंत का पार्ट है या आज से अंत तक का पार्ट है? अंत का पार्ट है।
लेकिन बाबा जब बाप बाप होकर जब सहन करता है कई बच्चों के नाज नखरे, तो उसे युक्ति कहाँ जाएगा या लगाव झुकाव कहाँ जाएगा?
बच्चे किसके? बाप ने अपने बुद्ध रूपी पेट से पैदा किए, गुरु तो पैदा नहीं करता, पैदा करता है क्या? अब तो लगे ना फटकरी रंग चौक हो आवे, वो क्यों सहन करेगा?
बाबा ब्रह्मा चार चार दुनिया बनाता है बाबा, चार दुनिया बनाता है, फिर लास्ट में ऐसा समझो ऐसा बोला कि जैसे दुनिया बनी ही नहीं, तो ये निराकार स्टेज में वो बोलता है कि उषा तुझे
वो राम वाली आत्मा के लिए बोला गया है या कृष्ण वाली आत्मा के लिए बोला गया है कि दुनिया बनी ही नहीं?
राम वाली आत्मा के लिए।
तो कृष्ण वाली आत्मा को क्यों बीच में ढकेल दिए?
तो मुकरर ब्रह्मा की बात।
हाँ जी, जो मुकरर रथधारी है, राम वाली आत्मा है, उसके लिए शास्त्रों में वशिष्ठ जी ने बोला है योग वाशिष्ठ में, हे राम ये दुनिया ऐसे समझो जैसे बनी ही नहीं। माने कोई आत्मा है, इतने जास्ती दुखों का अंबार आता है, उसको ये शिक्षा दी जाती है तो दुनिया को ऐसे समझो जैसे है ही नहीं, देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो।
तो नंबर वन ब्राह्मणों के लिए भी लागू
होता है। नंबर वन ब्राह्मणों के लिए भी लागू होता है, क्योंकि जो जितना दुख सहन करने में तीखा होगा वो उतना ही सुख भी सहन करने में तीखा होगा। दुखों के पहाड़ गिरते हैं तो सुखों के भी पहाड़ गिरते हैं। दुख सहन करने की जिसमें शक्ति नहीं है, उसकी इंद्रियों में सुख सहन करने की भी शक्ति नहीं होगी। दुख सहन करना और सुख सहन करना ये आत्मा का पार्ट है। इंद्रियों से ही सुख सहन किया जाता है और इंद्रियों से ही सुख भोगा जाता है। बीज पावरफुल होना चाहिए। कमजोर आत्माएं दुख सहन करने में घबरा जावेंगी, पीछे कदम उठा लेंगे, और जो पावरफुल होंगे ऐसे होंगे, पावरफुल होंगे माना भगवान के परिवार के होंगे, जिसे कहते हैं राज परिवार। भगवान आते हैं तो राज परिवार का संगठन करते हैं ना, कितनों का होता है परिवार 16108 प्रिंस प्रिंसेस का परिवार है, भले उसमें अच्छे पुरुषार्थ भी है और खराब से खराब पुरुषार्थ भी है, यथा राजा तथा प्रजा तो होती है। लेकिन हैं सब पवित्रता का विरुद्ध धारण करने वाली। नंबर वन, भगवान आते हैं तो पहली प्रतिज्ञा का क्या कराते हैं, है पवित्र रहो। तो 16000 पवित्रता का कदम बढ़ाते हैं और बाकी तो प्रजा वर्ग में आते हैं। प्रजा माने प्रभावित होने वाले, इसलिए बोला 16000 ही सरेंडर होते हैं और बाकी सरेंडर होने की लिस्ट में नहीं आते। ये भगवान आकर के राजयोग सिखाता है। राजयोग सीखने वालों की वास्तव में संख्या कितनी है, प्रजा भी राजयोग सीखती है, लेकिन आज संदेश लिया और कल घर में बैठ गए, हिम्मत नहीं है। और राजयोग सीखने वालों में हिम्मत आती है।
बाबा, सुदामा को बताया है कृष्ण के बाल सखा और वो जीवन भर दरिद्र बने रहते हैं, और कृष्ण को दिखाया है कि राजा बने रहते हैं,
है?
और अंत में जब वो अपनी पत्नी के कहने पे श्री कृष्ण के पास जाते हैं तो उनको जो है मतलब श्री कृष्ण काफी धन देते हैं।
हाँ जी।
वो स्थूल धन देखने में तो आता नहीं कुछ
है,
लेकिन जो धन देते हैं वो बाद में उनके लिए ऐसा धन होता है कि पहचान में नहीं आता है उनके कि हम अपने नगरी में है कि किसी और की नगरी में है।
हाँ, ये हमारी ही चीज है या किसी दूसरे की कमाई हुई है।
हाँ। तो ये अंतर क्यों है दोनों में, मतलब दोनों तो एक ही विद्यालय के पढ़े हुए,
ये बात कहाँ की है?
यही एडवांस की है।
ब्राह्मणों की संगम हुई दुनिया की बात है ना, तो यहाँ की बात है। तो बाप आते हैं गरीब निवाज बन करके आते हैं या रईस निवाज बनकर आते हैं, गरीबों को देते हैं और गरीब ही उठाते हैं, गरीब ही हिम्मत करते हैं। जो बड़े बड़े प्रॉपर्टी वाले हैं, ज्वाइंट प्रॉपर्टी जिनके पास बहुत ढेर सारी है, वो तो हिम्मत ही नहीं कर पाते। कृष्ण की आत्मा ने हिम्मत की क्या है? हिम्मत की लेकिन फिर क्या हुआ है? क्यों छोड़ना पड़ा?
पक्का ज्ञान में निश्चय नहीं हुआ उनको।
ज्ञान में निश्चय का मतलब क्या है? बाप की पहचान नहीं हुई, खुद ही भगवान बन के बैठ गए। मुरली में या बेसिक ज्ञान में कोई ऐसा पॉइंट है जिसके आधार पर ये लागू होता हो, सिद्ध होता हो कि दादा लेखराज में ही शिव प्रवेश करता है? कोई प्रूफ है? कोई प्रूफ नहीं। फिर कैसे शिव हम बन के बैठ गए?
लोगों ने कह दिया आपके अंदर शिव है, मान गए।
तू सुनी सुनाई बातों से भारतवासी दुर्गति को पाते। भगवान गरीबों को मिलता है और गरीब ही प्राप्ति करते हैं। इसलिए एडवांस में आज तक भी कोई करोड़पति आया है? नहीं आया। बेसिक में करोड़पति है या नहीं है?
और बाबा धर्मराज का पाठ बजाने वाली जो अष्टदेव की जो तीसरी मूर्ति है इस्लाम धर्म से जो कनेक्टेड आत्मा उनमें एक कट्टरता का तत्व रहेगा कि वो अपने तत्वों में एकदम कट्टर रहेंगे, दूसरी गंभीरता। बाबा ये सब जो गुण है ये किसी पुरुष चोलाधारी आत्मा में होना चाहिए।
जो स्वभाव संस्कार होते हैं वो शरीर में होते हैं या आत्मा में होते हैं?
क्योंकि बाबा वो श्रीमत को पूरी तरह से तभी फॉलो कर पाएगा अगर पुरुष चोला है, अगर स्त्री चोला रहेगा तो कहीं ना कहीं
आत्मिक स्थिति की बात है या देह अभिमान की बात है?
बाबा लेकिन आधीन में तो जाना पड़ेगा, चोले का असर तो पड़ता है।
रुद्रमाला काहे की? अगर रुद्रमाला का एक मणका एक के अधीन न रहे, बाप के साथ रहने वाले भी बाप को नहीं पहचान पाते, और एक मणका ऐसा है जो आदि से जब से आया तब से लेकर अंत तक है, एक बाप का आधार लेकर के रहता है और किसी की नहीं सुनता, तो किसे ताकत ज्यादा मिलेगी?
बस यही बात है
बाबा। लेकिन श्रीमत पर पूरी तरह चलने की ताकत भी शरीर के शरीर का कुछ ना कुछ तो प्रभाव होता है कि नहीं?
नहीं, अगर शरीर जो ऊंचे के ऊंचे है उसके संरक्षण में रहे आदि से अंत तक तो उसको क्या परवाह पड़ी है दूसरों की? परवाह है ते? शरीर भी उसी का।
इसका मतलब कोई स्त्री चोला
पुरुषार्थ में स्त्री और पुरुष की बात नहीं है, आत्मिक स्थिति की बात है। आत्मा स्वयं भी पुरुष है।
लेकिन स्थूल में कौन सा है वो पूछना था?
हा?
स्थूल में कौन है ये पूछना था, क्योंकि ये
कोई रुद्रमाला का मणका ही होगा।
वो तो रुद्रमाला लेकिन पुरुष चोला होगा कि स्त्री चोला होगा ये पूछना था।
सूर्यवंशी पुरुष संस्कार वाले होते हैं या स्त्री संस्कार वाले होते हैं?
बाबा पाठ नहीं खोलने
हैं?
बाबा पाठ नहीं खोलने वाले।
किसका
नाम नहीं लेंगे? नाम खोल
नहीं खोल रहा हूँ, सिर्फ पूछ रहा हूँ कि
बाबा का ज्ञान सिर्फ इशारे देता है।
आत्मिक स्थिति और बीज रूप स्टेज क्या डिफरेंस है?
आत्मिक स्थिति माने बिंदु इसका
निरंतर रहेगी तो बीज रूप स्टेज बनेगी।
निरंतर स्टार की याद है और कुछ परवाह नहीं, परवाह थी पार ब्रह्म परमेश्वर की, वो मिल गया, वो स्थिति बन गई, तो क्या चाहिए? जहाँ आत्मिक स्थिति है उस आत्मिक स्थिति से परमात्मा बाप दूर ही नहीं। और
बाबा लौकिक में वो जम्मू कश्मीर का जो शिवलिंग है बर्फ का वो अभी पिघल रहा है, पिघल नहीं मतलब बहुत सारा पिघल गया है वो, तो उसकी जो ये बता रहे हैं कि मनुष्य जब ज्यादा वहाँ पे इकट्ठे हो रहे थे उनके वाइब्रेशन की वजह से वो पिघलना शुरू हुआ गर्मी की वजह से।
ठीक है,
तो उसका मतलब एडवांस में इस तरह का कोई वाइब्रेशन चल रहा है?
पहली बात है लिंग बर्फ का होता है क्या?
नहीं, वहाँ टिका हुआ है।
हैं?
वहाँ तो टिका हुआ है लिंग बर्फ का ही जो बना हुआ है वो बर्फ ही है।
लेकिन होता है क्या
मान्यता उसको लिंग की
उसका अर्थ कोई होगा? भक्ति मार्ग में तो सिर्फ दिखाते हैं, लेकिन अर्थ कहाँ का है? ज्ञान मार्ग का है। बाबा ने इशारा दे दिया, तुम बच्चों की योग बल से कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएंगी, ऐसी शीतल हो जाएंगी जैसे बर्फ।
तो लास्ट की स्टेज बताई
है,
लास्ट की स्टेज बताई।
हाँ जी, लास्ट की स्टेज है। लास्ट की स्टेज होने के बाद फिर शूटिंग पीरियड में लास्ट होता है कि नहीं होता है? होता है। श्रेष्ठ आत्माओं का भी संसर्ग होता है और निष्कष्ट आत्माओं का भी संसर्ग होता है। संघ का रंग लगेगा या नहीं लगेगा?
और बताते हैं कि वहाँ पे आसाराम बाबू के कुछ भक्त गए थे, आसाराम बाबू खुद गए थे वहाँ प्रवचन कर रहे थे बैठ।
हाँ जी।
और उनके हेलीकॉप्टर वगैरह से लोगों का जाना हुआ वहाँ पे, और उसके वाइब्रेशन जो हुआ वहाँ पे वो प्रदूषण उसकी वजह से वो तब से वो पिघलना शुरू हो गया ऐसा बताते।
ठीक है। भक्ति मार्ग में आसाराम बापू है तो ज्ञान मार्ग में कोई आसाराम बापू नहीं है क्या?
दिलाराम बापू
है, वो आशा दिला के नहीं रखे हैं सबको? असली आसाराम कौन से हुए फिर? और
बाबा शुरू शुरू में साक्षात होकर के संगठन बना, साक्षात्कार हुए थे।
हाँ।
बाबा ने कहा जो शुरू आदि में हो अंत में होगा।
हाँ।
तो अंत में बच्चों की स्थिति से साक्षात्कार औरों को होंगे या बाबा कराएंगे?
एक होता है साक्षात्कार बुद्धि का और एक होता है साक्षात्कार बंद आंखों का। यदि जब आरंभ हुआ तो उस समय दुनिया में भक्ति का फाउंडेशन पक्का था या ज्ञान का? तो भक्ति का ही आधार लेना पड़े, अच्छे अच्छे भक्तों को ही उठाना पड़े। तो साक्षात्कार की चाबी मैं अपने पास रखता हूँ। वो साक्षात्कार हुआ यज्ञ के याद में, अंत में भी साक्षात्कार होंगे क्योंकि बाप के वारसदार भी है, बाप की एक प्रजा भी है और बाप के भक्त भी है। वारसदार तैयार हो जाएंगे तो प्रजा भी अपने आप तैयार हो जाएगी, फिर भक्तों का कल्याण कौन करेगा? जो बाप की स्टेज है निराकारी, वो निराकारी निर्विकारी निरहंकारी स्टेज ही भक्तों को मैदान में लाएगी। जैसे आज में साक्षात्कार होते थे, अंत में भी साक्षात्कारों की जड़ी लगेगी।
तो ज्ञान के साक्षात्कार होंगे,
ज्ञान के साक्षात्कार ज्ञानी तो आत्माओं को होते हैं। एडवांस में प्रजा नहीं है, प्रजा वर्ग की आत्माएं ज्ञान सुनती है या प्रभाव देखती है? प्रैक्टिकल प्रभाव को देखेंगी, प्रैक्टिकल ज्ञान को मानेंगी। और धर्मों के जो भक्त होंगे और सूर्यवंशियों में जो भक्त किस्म की आत्माएं होंगी, उनमें कुछ अंतर होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, विशेष अंतर होगा। ऐसे ही और धर्मों की जो प्रजा वर्ग की आत्माएं होंगी और जो सूर्यवंशियों की प्रजा होगी, उस प्रजा की क्वालिटी में भी अंतर होगा। वहां यथा राजा तथा प्रजा यानी तू आत्मा होते, ये नहीं कहा। यथा राजा तथा भक्त सब एक जैसे होंगे, जबकि बाप के भक्त भी होते हैं। और
अचानक से जो शरीर छोड़ते हैं उनके लिए क्या शरीर मिलता है, क्या अड़ते ही रहते हो?
उनके पूर्वजनों का हिसाब किताब जब तक है तब तक भटकाव होगा, हिसाब किताब पूरा होगा और सूक्ष्म शरीर से छुटकारा हो जाएगा, वो खास करके इस अंतिम जन्म में। और जन्मों की बात नहीं है छुटकारे की, और जन्मों में तो जन्म भी ले लेते हैं फिर पाप कर्म करने लग पड़ते हैं। सूक्ष्म शरीरधारियों को, फरिश्तों को दूसरे धर्म में ज्यादा मान्यता है या भारत में ज्यादा मान्यता है? दूसरे धर्म वाले भूत प्रेतों को बहुत मानते हैं। अभी भारत में भी गांव गांव में भूत प्रेतों की पूजा हो रही है, उसका प्रभाव विदेशियों का प्रभाव है। भारतवासी देवताओं को मानते हैं, भूत प्रेतों को नहीं मानते। एक थर्ड क्लास विद्या मानी जाती है भूतों की पूजा, उससे ऊंची है देवताओं की पूजा, और उससे भी ऊंची है भगवान की पूजा। भक्ति मार्ग में होती है पूजा और ज्ञान मार्ग में होती है याद। अति होती है तभी तो अंत होता है। जो अति होती है तो अंत होता है ना, तो संदेश मिलने की भी अति होगी कि नहीं होगी? ऐसे ही चीटी मार्ग से संदेश मिलता रहेगा, उसकी भी अति होगी, उनका भी कल्याण होगा।
ऐसे वो बुजुर्ग आत्माएं जो है ना, उनको दोपहर से लेके कलयुग का जो पीरियड है मतलब 2500 साल का संगम युग के पहले वाला, उसमें ये कॉन्शियस रहती है कि मैं अगर अमर अविनाशी आत्मा हूँ ऐसा?
वो यहाँ की प्रैक्टिस के आधार पर है। जिनकी यहाँ जितनी जास्ती प्रैक्टिस होती है आत्मिक स्थिति की, वो द्वापर कलयुग में भी जास्ती आत्मिक स्थिति में रह करके मन चिंतन मंथन की स्टेज में रहेंगे। ये शास्त्र बनाने वाले कौन है? हैं? ये मनन चिंतन मंथन की स्थिति इन्होंने कहां से बनाई? ये संस्कार कहां से पैदा किए? संगमी दुनिया से। जो जितना बीज रूप स्टेज में टिकने के प्रैक्टिस्ड होते हैं वो बीज उतना ही विस्तार को पाता है। बीज रूप में टिकने में मेहनत ज्यादा है या विस्तार में जाने में मेहनत ज्यादा है? बीज रूप में टिकने का पुरुषार्थ करना पड़ता है, और जो जितना संकल्प निसंकल्पी स्टेज में टिकता है वो उतना ज्यादा विस्तार में हो जाता है स्वतः ही। उसके लिए प्रैक्टिस करने की दरकार नहीं है।
जैसे कहा कि अंतिम जन्म में जिसको अच्छा चोला मिलता है, अंतिम जन्म में जिसको अच्छा चोला मिलता है शरीर रूपी चोला, तो उसका पहला जन्म का जो कर्म है वो हिसाब से मिला है, मतलब जैसा कर्म उसने किया है वैसा वो लास्ट जन्म में चोला मिला उसको।
मैंने ब्रह्मा बाबा को बहुत फर्स्ट क्लास चोला मिला
लास्ट जन्म में।
हाँ
बाबा ने कहा अगर
अरे एक बात पर टिको तो पहले पूरी बात तो होने दो। मान लो ब्रह्मा को अंतिम जन्म में बहुत फर्स्ट क्लास चोला मिला, तो फर्स्ट जन्म में क्या मिला होगा?
ट्रेन रुक गई क्या?
तब साधन होगा, काला साधन होगा तो माया के बंदे से बच जाओ। एक तरफ कहा कि अच्छा चोला है तो पुरुषार्थ अच्छा क्या होगा?
ये कोई बात नहीं, ये तो कहा ही नहीं बाबा ने, तो कहा संगम युग में काली कलूटी बैंगन लूटी हो तो बहुत अच्छा, तो उल्टा कह रहे हो। चलो खलास हो गया। एक ब्रह्मा की स्टेज है पुरुषार्थी जीवन की, जो ब्रह्मा विकारी कहा जाता है। ब्रह्मा क्या है? विकारी। उसकी पूजा नहीं हो सकती। पूजा किसकी होती है? पूजा होती है प्योरिटी के आधार पर। तो जो बोल बोल की स्टेज में है, प्रैक्टिकल करने की स्टेज में नहीं है, वो विकारी स्टेज है। इसलिए ब्रह्मा है। और विष्णु प्रैक्टिकल स्टेज है या बोल बोल की स्टेज है? आत्मा ही काम करती है। ब्रह्मा में भी सहन शक्ति का पार्ट बजाने वाली आत्मा थी या शरीरदारी था? कौन सी आत्मा थी? शिव की आत्मा थी। ऐसे ही विष्णु के जो संपन्न पार्ट चलता है उसमें भी प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन? त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। दो मूर्ति क्यों नहीं कहा जाता? शिव की मूर्ति और ब्रह्मा की मूर्ति दो मिल करके कर दें काम, दो मूर्तियों में प्रवेश हो जाए तो काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। हाँ, दो मूर्तियों में एक में बोल बोल का पार्ट, कथनी का पार्ट, मनन चिंतन का पार्ट नहीं, और प्रैक्टिकल पार्ट भी नहीं, वो ब्रह्मा का पार्ट। दूसरी मूर्ति कथनी भी है और मनन चिंतन मंथन भी है, प्लानिंग भी है नई दुनिया की, लेकिन प्रैक्टिकल गुप्त है, क्योंकि बाप गुप्त होकर के आते हैं। प्रत्यक्ष होकर आते हैं या गुप्त होकर आते हैं? गुप्त होकर के आते हैं। और तीसरी मूर्ति है कथनी नहीं है, क्या है? मंथन नहीं है, क्या है? प्रैक्टिकल करके दिखाने वाली है। दो प्रैक्टिकल करने का कार्य है, पार्वती वाली आत्मा कहो या वैष्णवी वाली आत्मा कहो, राधा वाली आत्मा कहो, उसने 63 जन्म में करके दिखाया किया है? नहीं किया। फिर यहां कौन कर रहा है संगम में, या कौन करा रहा है? शिव कर रहा है, शिव करा रहा है, इसलिए त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। ऐसे नहीं कि विष्णु की मूर्ति को निकाल दिया जाएगा, ऐसे भी नहीं है। कि शिव उस समय प्रवेश ही नहीं होता, प्रैक्टिकल कार्य करके दिखाने के लिए प्रवेश है। मैं करणहार भी हूं और करावनहार भी हूं, दोनों पार्टी के द्वारा वो अंत में प्रत्यक्ष होता है। विष्णु की मूर्ति के द्वारा करणहार, ब्रह्मा सो विष्णु, और शंकर की मूर्ति के द्वारा करणहार का पार्ट नहीं बजावे चाहे, लेकिन करावनहार का पार्ट बजाता है, बच्चों से करा के छोड़ेगा। ब्रह्मा का पार्ट जस्ट अपोजिट था, बच्चे करें या न करें लेकिन ब्रह्मा को चक्कर के दिखाना है। तो तीनों मूर्तियों का पार्ट अलग अलग है, ऐसे नहीं कि विष्णु की मूर्ति में प्रवेश ही नहीं हुआ तो त्रिमूर्ति शिव क्यों कहा जाता है?
आपने एक ही करना है,
है?
जो मुकाना रात या तो उसको ही करना है,
जो आज से लेकर अंत तक है वो मुकर्रर है, या जो आदि में है अंत में नहीं, मध्य में है आदि में नहीं, या अंत में ही है और आदि और मध्य में नहीं, उसको याद करना है। जो आदि में भी है, मध्य में भी है और अंत में भी है, वो मुकर्रर है।
अंत में तो बाबा तो बाणप्रस्थ हो जाएंगे, क्या होगा बाबा?
वो बाणप्रस्थ हो जावेंगे, लेकिन जब आत्माएं वापस परम धाम में जावेंगी तो वो अंत समय होगा या नहीं होगा?
बाबा ने बोला मैं पतितन में प्रवेश करता हूँ,
ठीक है?
बोला मैं पतितन में प्रवेश किया हूँ, मैं पतित पावन हूँ, तो इसमें जो वैष्णवी माता है वो तो पतित नहीं है, ये जन्म में
तो कहाँ, तो तुम कैसे साबित करोगे उसमें प्रवेश किया है?
साबित नहीं है, गुप्त है।
गुप्त है
तो गुप्तेश्वर इसमें है या उसमें है?
है गुप्तेश्वरी।
और पश्चिम बंगाल का गवर्नमेंट क्या हुआ
जब बंटवारा नहीं हुआ था हिंदुस्तान पाकिस्तान का, तो न पश्चिम बंगाल था न पूरब बंगाल था, एक ही बंगाल था। जब बंटवारा हुआ तो पश्चिमी पाकिस्तान में बंगाल के दो हिस्सों में से पूर्वी बंगाल का हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया गया, बाकी कौन सा बचा? पश्चिमी हिस्सा बचा, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा? वेस्ट बंगाल।
नहीं वो ये प्रश्न ये हुआ, जैसे बिहार मतलब बिहार बाहर लाया,
हाँ जी,
अंधकार की जिससे ज्ञान की रात गुजर गई
है,
पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल भेद क्या अर्थ होगा?
बंगाल के लिए तो कितनी बार बोला चुका जा चुका है, बंगाल फाराल। क्यों रविंद्र भाई
आवाज फैलाने में तो बनेगा, लेकिन बंगाल सब के लिए है, बंगाल है ही सारी दुनिया का बीज। बनियन ट्री यादगार कहाँ बनी हुई है? नई दुनिया की स्थापना का काम शुरू होता है 36 से, तो बीज कहाँ से पकड़ा? बंगाल से पकड़ा। तो बीज ही तो सारी दुनिया का कल्याण करेगा, और बीज रूप से जो भी कनेक्टेड होंगे, यथा राजा तथा प्रजा, सब विश्व के कल्याणकारी होंगे।
बाबा
बाबा बी ऑफ विंडो से होती है, बी ऑफ
अरे बुन 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 करोगे तो जो सुनने में आ रहा है वो भी नहीं आ रहा है।
बाबा 2018 में राधा कृष्ण का जन्म होगा, में कहा है कि 9 लाख सीतारा का गायन है, तो साल 36 में तो 18 साल होगा, तो उसके बीच क्या सारी चंद लाख आत्मा का जन्म हो जाएगा क्या, इकट्ठा हो जाएगा?
हाँ
मतलब
जन्म हो जाने के दो अर्थ भी हैं,
उनका पार्ट प्रत्यक्ष हो जाएगा, पार्ट प्रत्यक्ष होना वो भी जन्म होना है, और 9 लाख सितारे आसमान में चमकेंगे, तो स्थूल में तो 4.5 लाख ही होंगे, बाकी 4.5 लाख उनमें प्रवेश होंगे, तो जो प्रवेश होने वाले हैं, उन प्रवेश होने वाले का फाउंडेशन कहाँ से शुरू होता है? कौन सी आत्मा से शुरू होता है? है मम्मा और बाबा से। तो जैसे मम्मा और बाबा किसमें प्रवेश करते हैं ये प्रत्यक्ष हो जाता है आदि में, ऐसे ही जो 4.5 लाख हैं जन्म लेने वाले, या बुद्ध रूपी पेट में प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेने वाले, वो पहले ही प्रत्यक्ष हो जाएंगे, पता चल जाएगा इस आत्मा का इसमें प्रवेश होता है।
जैसे राधा कृष्ण साकार में जन्म ले लिया, वैसे 2036 के बाद वो आत्मा को जन्म होगा?
ये अपने अपने योग बल की बात है, योग बल पक्का होगा तो शरीर 100% निरोगी बनेगा, योग बल में कच्चापन होगा या दूसरे धर्म पिताओं से प्रभावित होगा तो कच्चापन आ जाएगा, बच्चा प्रत्यक्ष नहीं होगा पूरा, इसलिए 9 लाख की जो संख्या है वो सतयुग का जो पहला जन्म होगा 150 वर्ष, उस 150 वर्ष के अंत में 9 लाख जनसंख्या, ऊपर से उतरने वाली आत्माएं जो नीचे आके राधा कृष्ण के रूप में जन्म लेंगी और लक्ष्मी नारायण जैसे मां बाप से पालना लेंगी, वो 150 साल में प्रत्यक्ष होंगी प्रैक्टिकल साकार शरीर से।
बाबा ये मुरली में सुना है, बहुत पुराने मतलब बाबा कितना दिन के लिए प्रैक्टिकली आते हैं धरती पर, तो बाबा बोला तो दिया 60 से 65 ईयर्स के लिए, तो बाबा अभी अभी बोला आदि से अंत तक बाबा ही तो रहेंगे, लेकिन 60 से 65 ए ईयर ऐसे कहाँ से लागू होता है?
बाबा किसे कहा जाता है? तो अंत तक रहेगा या नहीं रहेगा? बाबा जब कहते हैं तो जरूर साकार है, और साकार तो मुरली में बोला है इस सच्ची पर सदा कायम कोई चीज है ही नहीं, सदा कायम एक शिव बाबा ही है, तो ये प्रश्न ही गलत हो जाता है कब तक रहेगा।
जब मुरली में सुना 60 से 65 ईयर्स के लिए बाबा आते हैं ऐसा सुना, इसीलिए
है
60-65 साल के लिए
है
बाबा आते हैं, कौन साल कौन ईयर्स से लागू होता है ये मेरा प्रश्न। 76 से मतलब तो 76 से होना 60 ईयर्स हम काउंट किया उससे माफी दिखता है 36,
उस समय बाबा पहचान में आता है, है?
छोटा सा
वो बाबा पहचान में आ जाता है, ब्रह्मा ने पहचाना बाप की प्रत्यक्षता सन 36 से होती है क्या? जय श्री राम। और आगे
खड़े
3.5 साल का बाबा 3.5-4 साल में तो वैष्णो देवी का प्रत्यक्ष होने वाला है, तो अभी क्यों नहीं बाकी?
4.5 साल में क्या?
3.5-4 साल में तो वैष्णो देवी का प्रत्यक्ष का टाइम है ना।
हाँ 4.5-5 साल वैष्णो देवी की प्रत्यक्षता का टाइम है, और 2004 में रुंग सहित शूटिंग का टाइम पूरा हो गया। 2004 में, तो 2004 के बाद 4.5 साल जेड कर दो।
बाबा
98 और जो 99 है वो द्वापर युगी शूटिंग पूरी होती है रुंग वर्ष सहित, तो कलयुग की शूटिंग कब से शुरू हुई? 98-99 में तो द्वापर युग की शूटिंग पूरी हुई, फिर कलयुग की शूटिंग कब से शुरू कहें? 2000 से, जब से मेले मलाखड़े शुरू होते हैं। मेले मलाखड़े कौन से युग में शुरू होते हैं? कलयुग में शुरू होते हैं। तो 2000 में कलयुग की शूटिंग की शुरुआत हो गई। टोटल शूटिंग कितने साल चल रही है? 16 साल सतयुग के लिए, 12 साल त्रेता के लिए, 8 साल द्वापर के लिए, तो कलयुग की शूटिंग 4 साल कब पूरे होते हैं? रुंग सहित 2004 में पूरा होता है, अब 4.5 साल उसमें ऐड कर दो, 8.5 हो रहे हैं।
माता जी का खुशी आपको पकड़ लेंगे, शिव मंदिर बाबा शिव मंदिर काली होगी, बाबा दिखा दिए सबको, बाबा सबको दिखा दिए। माता जी
पोता मेल है पोता मेल। हाँ जी हमारे बोले की बात नहीं, जो लॉजिकल है उसे पकड़ना है। लॉजिकली एक एक वर्ष गिनाई दिया, जनसंख्या तब बढ़ती है जब चित्र और लिटरेचर छपना शुरू हुआ, सतयुग की शूटिंग शुरू हो गई, जनसंख्या वृद्धि शुरू हो गई। कब से हुई है? अरे सतयुग की शूटिंग कब से कब तक? 60-61 से लेकर के 76 तक, 75-76 तक, ये 16 साल हुए सतयुग की शूटिंग के, और 77 वर्ष हुआ संपूर्णता वर्ष, रुंग वर्ष मिला के एक वर्ष ऐड हुआ। उसके बाद त्रेता युगी शूटिंग 12 वर्ष में, जो शास्त्रों में जो बात बोली गई, कलयुग से द्वापर दुगना, त्रेता तिगना और सतयुग चौगुना, तो त्रेता युगी शूटिंग के 12 साल 77 के बाद ऐड कर दिए, कितना आया? 89। एक वर्ष रुंग का ऐड कर दिया, कितना आया? 90 हो गया। फिर द्वापर युग की शूटिंग कितने साल? 8 साल। 8 साल द्वापर युग की शूटिंग पूरी हुई और कंस की जेल में कृष्ण का प्रत्यक्षता वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता वर्ष मनाया गया। कौन से सन की बात है? 98। ये 8 साल हो गए द्वापर युग की शूटिंग के, अब उसमें रुंग वर्ष जोड़ दिया, 99 हो गया। 99 के बाद कलयुग की शूटिंग कितने साल होनी चाहिए? 4 साल ऐड कर दिए। कब पूरा हुआ? 2003 में। एक वर्ष रुंग का ऐड कर दिया, 2004 पूरा हुआ, और 3.5 कहां से निकाल लिया?
अंतराल का टाइम जैसे ब्रह्मा का पीरियड 14 साल, शंकर का पीरियड 7 साल,
फिर 2004 से
3.5
साल लगेंगे।
बताया ना,
ब्रह्मा को प्रत्यक्ष होने में
14 साल,
सन 36 से लेकर के और 37।